मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे सचमुच इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने जो नीतू सरकार के जीवनी के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा की है उसको लेकर आप सबके अंदर एक जबरदस्त किस्म के उत्साह से जुड़ी प्रतिक्रियाएं मुझे जानने को मिली हैं। और कल भी ऐसे बहुत सारे मेल आए जिसमें उन्होंने अपने आक्रोश के बारे में बताया कि उसको पढ़ने के दौरान उन्हें किसके प्रति आक्रोश का भाव की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपने सामान्य आक्रोश में ले लिया कि मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है। नहीं, मेरा प्रश्न था कि इसको जब आप पढ़ रहे हैं या नीतू सरकार की जब आप जीवनी को सुन रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि बीच बीच में गुस्से का भाव आया होगा। तो मेरा कहना यह था या पूछना यह था कि किसके प्रति गुस्सा आ रहा है। और कल हम लोगों ने इस पर बात की थी कि मैंने अपनी बात कही थी इनफैक्ट कि मैं इसके लिए जो जिम्मेदार ठहराता हूं वो समाज को ठहराता हूं, और फिर स्वाभाविक है कि जो जिम्मेदार होगा उसी के प्रति आपके मन में गुस्से का भाव आएगा। कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और उसमें समाज का भी उल्लेख किया गया है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं आप भेजना बंद कर दें। देखिए, आजकल तो 2 मिनट्स का जमाना है, क्विक फिक्स का जमाना है। आपने ऑडियो सुना और फट से अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज दें। अगर लेट होते हैं तो ठीक है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और उसका पूरा सम्मान भी करता हूं और मैं बकायदे उसे पढ़ता भी हूं, लेकिन तब तक वो बासी हो चुका होता है और यूं कह लीजिए कि फिर उसे चर्चा में शामिल करना मुश्किल होता है। कल मुझे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेल मिला नगमा का, उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कहां से हैं। प्लीज थोड़ा सा आप लोग ये भी लिखा करें कि आप कहां से हैं, है ना। और अगर किसी को लगता है कि नहीं उनका नाम न लिया जाए क्योंकि कुछ लोगों के अपने रिजर्वेशंस होते हैं तो आप बकायदे मुझे जो भी अपने विचार लिखना चाहते हैं लिख दें और आखिरी में कह दें कि सर मेरा नाम न लिया जाए, मेरा उल्लेख न किया जाए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कम से कम मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं तो मिल जाएंगी और मेरे लिए वही अमूल्य है, राइट। तो नगमा जी ने जो एक बात पूछी जिससे मैं दंग रह गया और मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने पूछा कि सर समाज जिम्मेदार है लेकिन समाज को बदलने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न उन्होंने पूछा। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मुझे इसी विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रश्न नगमा जी के दिमाग में है वही प्रश्न और भी दूसरे आप सबके दिमाग में हो और आप समझ ना पा रहे हो कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप सबके सामने इसके बारे में रखना चाहूंगा। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी मैं समाज के बारे में बात करता हूं, अपने पेरेंट्स के बारे में बात करता हूं, मतलब अपन लोगों के सभी के पेरेंट्स के बारे में, तो मैं उनकी सोच के लिए उन्हें बहुत कम जिम्मेदार ठहराता हूं। नो डाउट कि उस सीमा तक वो जिम्मेदार हैं जिस सीमा तक समय के साथ वो अपने को बदल नहीं पाए हैं। अदरवाइज समय बहुत बदल गया है। मैंने ऐसे भी ओल्ड पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपने को बहुत जबरदस्त रूप से बदला है, उन्होंने समय के साथ कदम ताल की है, लेकिन खुद को बदलने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। तो वो जैसे भी हैं उनके जैसे भी विचार हैं, इनफैक्ट सच पूछे तो उनके अपने समय की देन है, वो अपने समय की निर्मिति हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैं अपने समय की निर्मिति हूं, आप सब अपने समय की निर्मिति हैं। और याद रखिए कि आज की पीढ़ी को बकायदे मेरी पीढ़ी से भी ढेर सारी शिकायतें हैं, हो सकती हैं क्या हैं ही, और कुछ बातों को लेकर के टकराव की सीधे सीधे स्थिति भी है, सीधे टकराव की स्थिति है, और थोड़ी मोड़ी टकराव की नहीं, बहुत ही जबरदस्त टकराव की स्थिति। एक कह रहा है हां, दूसरा कह रहा है ना, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो हमें इस तथ्य को समझना होगा कि हमारे समाज में जो ये सब बुराइयां हैं, हम ये न मान करके चले कि साहब इसके लिए यही सब जिम्मेदार हैं, है ना। देखिए, समाज में परिवर्तन बहुत मुश्किल से होते हैं और जो वास्तविक परिवर्तन होते हैं, याद रखिए, वो सामाजिक परिवर्तन ही होते हैं। कानून क्या करेगा, कानून समाज को परिवर्तन जो करने के लिए आगे आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर देगा, जैसे मान लीजिए कि बाल विवाह के खिलाफ कानून है और आज से नहीं बहुत समय से कानून है बाल विवाह के खिलाफ, लेकिन बाल विवाह हो क्यों रहे हैं, कानून तो है, तो आप कह सकते हैं कि फिर इस कानून को ही हटा देना चाहिए। नहीं, यहां भी हम जब ये बात कहेंगे तो शायद थोड़ा सा अव्यवहारिक हो जाएगा, इसलिए कि जो मान लीजिए कि बाल विवाह का विरोध करना चाह रहे, जैसे हम मान लीजिए चलिए नीतू सरकार की बात लें और वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, ठीक है आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन फिर वो जाए कहां, तो हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने ससुराल को छोड़ने का एक जबरदस्त साहस दिखाया उसी तरह का साहस वो शुरू में दिखा चुकी होती हैं और घर छोड़ करके वो पुलिस थाने जा सकती थी या कलेक्ट्रेट में जा सकती थी कि मेरा बाल विवाह किया जा रहा है और मैं बाल विवाह नहीं करना चाहती, तो ऐसी स्थिति में उनको कम से कम कानून का सहारा तो मिल जाता, तो लोगों के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन वो साहस भरने का काम करता है कि कम से कम तंत्र तो हमारे साथ है, इसीलिए आप कानून को बेकार मत समझिएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कानून को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वहीं पर फिर समाज के साथ उसके टकराव की स्थिति को देखना होता है और वहां फिर एक व्यावहारिक रास्ता करीब करीब आप सब कह लीजिए कि समाज भी निकालता है और सरकार भी निकालती है, तो यही इन सब मामलों में हो रहा है। तो अब हम कर क्या सकते हैं, ये मैंने आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई है ताकि आप समाज को बहुत ही तार्किक रूप से समझ सकें, ये नहीं कि उसके खिलाफ दुराग्रह पाल लें, उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं कि यार ये सब तो ऐसे ही हैं, इनको तो बदलना बड़ा मुश्किल है, आजादी के 70 साल हो गए, कानून नहीं बदल पाया, पुलिस नहीं बदल पाई, तो हम क्या बदल पाएंगे। नहीं, ये मुझे लगता है कि एक तरफा सरेंडर होगा, आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि जो समाज में बदलाव होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, क्रमशः होते हैं और उसके लिए पीढ़ियां कोशिश करती रहती तब जाकर के समाज बदलता है। कोई भी समाज बिजली के स्विच ऑन ऑफ की तरह, ऐसा नहीं कि बल्ब जल गया और बल्ब बुझ गया, ऐसा नहीं होता। आप इतिहास उठा करके देखिए, आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, 10th तक आप भारत के साथ साथ दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, कैसे बदलाव होता है आपको मालूम हो। तो मित्रों, मुझे लगता है कि अब की पीढ़ी जो अपेक्षाकृत काफी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, तार्किक भी है, और तार्किक नहीं है तो उसे तार्किक होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में जितनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए वो सब के सब विज्ञान पर आधारित है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ये क्या है, ये तर्क पर आधारित है, ये विज्ञान है, साइंस है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, विज्ञान है। हाँ, जब हम इन्हीं बातों को जब रामायण में और महाभारतों में पढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि ये कोई दैवीय शक्ति रही होगी। अगर इसी तरह की कोई बात की जाए कि संजय की दृष्टि थी कि वो महाभारत की कथा सुना रहा था धृतराष्ट्र को बैठे बैठे आंखों देखा हाल, तो उसकी कोई एक अद्भुत शक्ति रही होगी, लेकिन आज तो नहीं है, आज भी आप रोज सुनते रहते हैं आंखों देखा हाल। तो आप विज्ञान को जी रहे हैं, याद रखिए आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं सब विज्ञान पर आधारित है। आप खाना बना रहे हैं तो गैस चूल्हे पर बना रहे हैं, वहां विज्ञान है। आप बल्ब जला रहे हैं, विज्ञान है। फ्रिज में विज्ञान है, किस में विज्ञान नहीं है। गाड़ी में जा रहे हैं तो विज्ञान है, हर जगह विज्ञान है। आपको नहीं लगता कि आपके दिमाग में भी विज्ञान होना चाहिए, और अगर दिमाग में विज्ञान नहीं हुआ तो ये जो बाहरी विज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं इसके साथ तालमेल टूट जाएगा और वो हमारी जिंदगी के कह लीजिए दुर्भाग्य का या दुख का या असफलता का एक बहुत बड़ा कारण होगा। कारण इस रूप में होगा कि हमारा दिमाग जो है वो तो अवैज्ञानिक है और हम जीवन जी रहे हैं वैज्ञानिक यानी कि तौर तरीके के रूप में नहीं, वस्तुओं के रूप में, तो अनमैच्ड हो जाएगा। और याद रखिए यहां जो मैं वैज्ञानिकता की बात कर रहा हूं वो उस रूप में साइंस की बात नहीं कर रहा हूं सब्जेक्ट के रूप में, मैं तर्क के रूप में बात कर रहा हूं। साइंस मीन्स लॉजिक, यानी कि हम कोई भी कारण है उसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम हो रहा है उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो मित्रों, आप सब में वह शक्ति है और नहीं है तो आपको लानी चाहिए। हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं, जितने भी हमारी परंपराएं रीति रिवाज सब जो भी हैं, अपने समय में तार्किक ही थे लेकिन अब वो अतार्किक हो गए हैं क्योंकि इस बीच में विज्ञान ने बहुत सी चीजों को अनफोल्ड कर दिया है, बहुत सी रहस्यों का उद्घाटन कर दिया है। तो जो चीज पहले रहस्य हुआ करती थी अब वो रहस्य नहीं रह गई है। तो रहस्य के तहत जो परंपराएं चली आ रही थी तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जब हम जान चुके हैं तो बट नेचुरल है कि अब हमें उनसे मुक्त होना होगा, समाज को मुक्त करना होगा, और ये दायित्व तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा है वो युवा पीढ़ी के ऊपर है, युवा आपके ऊपर है। अब क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है मित्रों, सबसे पहले तो आप अपने को मॉडल के रूप में पेश कीजिए, वैसे जिंदगी जीना शुरू कीजिए, विद्रोह कीजिए चीजों के बारे में, विरोध कीजिए। विद्रोह शब्द थोड़ा सा ज्यादा भारी हो जाता है, आप विरोध कीजिए। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, सामने वाले उसे समझेंगे नहीं। कि आप तो कम से कम अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कीजिए कि नहीं नहीं मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, जो गलत चीज है मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और इसके बाद जो आपके गांव के लोग हैं उन्हें तर्कपूर्ण तरीके से समझाइए, बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए, बार बार समझाइए, बार बार बताइए। नाराज मत होइए, खीजिए मत, निराश मत होइए। आपको बार बार उनके पास जाना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और याद रखिए कि कोशिश कीजिए कि गांव में किसी तरीके से शिक्षा की रोशनी पहुंचाई जाए, किसी तरीके से उन्हें शिक्षित किया जाए। अभी मैं पुरानी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, अभी की पीढ़ी में शिक्षा का अभाव धीरे 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 घटता जा रहा है। और यही वह सूरज की रोशनी है जहां हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे समाज में आने वाले 25-30 सालों में बहुत तेजी से बदलाव होगा। यानी कि जमीन उपजाऊ है, बस आपको केवल उस जमीन पर मेहनत भर करनी है। तो देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय उन्हें साइंस समझाइए, और जो मैं साइंस की बात कह रहा हूं वो है जीवन का विज्ञान समझाने की कोशिश कीजिए, समाज को समझाने की कोशिश कीजिए। वक्त लगेगा, चलिए हम नहीं कर सके आप करें, आप नहीं कर सकेंगे आने वाली पीढ़ी करेगी। हमने जहां छोड़ा उसे आप आगे बढ़ाएंगे, आप जिसे छोड़ेंगे उसे आपकी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि जो समाज है वो एक बेहतर और तार्किक समाज होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।